ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. तो आपको आपके बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं, क्योंकि जब हम इस ज्ञान को सुनते हैं तो बहुत चीजें पहले भी सुनी होती हैं, या फिर किसी किसी चीज का हमें क्लैरिफिकेशन भी चाहिए होता है, है ना. जैसे आपने जो फर्स्ट लेसन है कि हम कौन हैं, जब सुना होगा तो उसमें एक शब्द, एक चीज आई कि आत्मा की तीन पावर्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार. तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो प्रश्न पूछा है कि मन और बुद्धि में अंतर है, कृपया स्पष्ट करें. अलग अलग है तो उसको, मतलब वो कैसे अलग अलग है मन और बुद्धि. तो निर्जा दीदी, आपसे ये प्रश्न है कि मन और बुद्धि अलग अलग है कैसे.
ओम शांति. आत्मा की दो तीन शक्तियां हैं विशेष, जो आपने फर्स्ट लेसन में जाना कि मन, बुद्धि और संस्कार. तो मन सोचने की शक्ति है. तो सोच हमारे वैरायटी प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे, बुरे, वेस्ट, टॉक्सिक, न्यूट्रल, ऐसे बहुत प्रकार के सोच हो सकते हैं. तो ये सोच को कैटेगराइज करना, ये बुद्धि का काम है. तो बुद्धि समझती है कि ये सही है कि गलत है, तो इसको कैटेगराइज करना वो बुद्धि का काम है. जजमेंट करना, मूल्यांकन करना कि ये किस टाइप का सोच है, इसको कार्य में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार का इवैल्यूएशन ये बुद्धि करती है.
तो जैसे दीदी ने बताया कि मन क्या करता है, मन सोचता है, थॉट्स क्रिएट करता है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, और बुद्धि क्या करती है, उसको विजुअलाइज करती है. और इसी से ही मेडिटेशन को और अच्छे से किया जा सकता है, जो कि आप, जो आपका लोकल सेंटर है वहां जाकर अच्छे से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली मन और बुद्धि को कैसे यूज करना है. तो सेकेंड क्वेश्चन ये है, जो बीच में सेशन भी थोड़ा सा हुआ एंगर के बारे में, और बहुत लोगों का आज ये प्रश्न आता है कि गुस्सा बहुत आता है, है ना. हमने भी ये प्रश्न पूछा था आपसे कि आप में से कौन कौन है जिन, जो चाहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गलत चीज है. तो एक ने हाथ खड़ा किया था सिर्फ कि, है ना, गुस्सा करना चाहिए. आप में से है कोई जिसको लगता है गुस्सा करना चाहिए, गुस्से के फायदे हैं? क्योंकि एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें क्या था, 30 बेनिफिट्स ऑफ एंगर, 30 बेनिफिट गुस्सा करने के बेनिफिट, और उसने बताए थे जो राइटर था. तो प्रश्न ये है कि जब मैं कुछ, थोड़ा सा वर्डिंग में अलग है लेकिन इसको समझकर मैं अपनी लैंग्वेज में बोल देता हूं, कि जब हम कुछ कहते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बिना पूरा वाक्य सुने काटता है या बीच बीच में कुछ बोलता है. मतलब हम कुछ बात कर रहे हैं और सामने वाला बीच में बात को काट देता है, या ध्यान से नहीं सुनता है, या मोबाइल यूज कर रहा है, या किसी और से बात करना, जो भी, हमारा ध्यान से वो सुन नहीं रहा है बात को, तो हमें गुस्सा आता है. तो उसमें क्या करना चाहिए? तो सुरेश भाई जी, आप इसका उत्तर देंगे.
ओम शांति. गुड मॉर्निंग. आप सब यहीं हैं ना, या कहीं और हैं? ट्रेन छूटने वाली है, बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टैक्सी बुक हुई कि नहीं हुई, कहाँ हैं? हैं? अभी यहीं है ना, तो अभी थोड़े समय के लिए वापस यहां आ जाइए, क्योंकि आपसे संबंधित ही बात के लिए ये सेशन है एक प्रकार से. लेकिन जहां गुस्से की बात कर रहे हैं अपने प्रश्न के हिसाब से, गुस्सा आता है. आपको मैं एक चैलेंज देने के लिए तैयार हूं. आप जो समझते हैं, जैसे अभी भाई जी कह रहे हैं गुस्से से बहुत फायदा होता है, बोला ना, आप में से कौन कौन समझते हैं गुस्से से फायदा होता है, हाथ उठाइए जरा. कोई नहीं है
ये सामने.
अच्छा, एक वहां पर. हाँ जी, अभी आप तीन हैं, आपके लिए एक चैलेंज है कि आपको 4 घंटे तक लगातार गुस्सा ही करना है. आर यू रेडी? अभी तो आपने बोला गुस्से से फायदा होता है। जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रगति करने के लिए, फायदा उठाने के लिए लोग जिंदगी भर प्रयास करते हैं। आप चार घंटे के लिए भी ना बोल रहे हैं, हो सकता है और उसका दुष्प्रभाव भी होता है, दोनों ही बातें साथ है ना। इसीलिए एक बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट है जो आप कह रहे हैं, उसमें एक्चुअली होता क्या है, गुस्सा आता है कुछ पलों के लिए आता है और उसके बाद शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, संबंधों के ऊपर दुष्प्रभाव भी होता है। और उससे बचने का बेसिक इंस्टिंक्ट जो मैंने कहा, उसी लिए भगवान ने हमारे अंदर ऑलरेडी वो जीन डाला हुआ है कि आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, इसीलिए आप लगातार गुस्सा नहीं कर सकते हैं। और गुस्सा आने का जो कारण होता है वो ये है कि मेरी बात को नहीं सुन रहा है, मैंने जो कहा वो नहीं कर रहा है, मैं जो चाहता हूं वही होना चाहिए, लाइक वाइज। इसीलिए हमको ये कहा जाता है एज ए ह्यूमन बीइंग वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस, जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना शुरू करते हैं तब हमें गुस्सा आने की जो आदत है वो समाप्त होती है। अब आप एज ए प्रोफेशनल ये कहेंगे कि नहीं, हमें तो वो काम नहीं करता है तो उसे करवाना ही पड़ता है, तो आपके पास दो ही चॉइस हैं, एक गुस्सा करके करवाएं और दूसरा प्यार से करवाएं। विच वन इज बेटर, है ना? तो प्यार से कराने के लिए जो आवश्यकता है वो है अंतर की शक्ति, और वही यहां पर हमको सीखने को मिली है कि हम अंदर से शक्तिशाली होंगे तो अपनी बात सामने वाले तक स्पष्ट रख सकेंगे और उसे इंटरनली मोटिवेट कहिए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कहिए, अपने शब्दों की शक्ति से कहिए, प्रिपेयर कर सकेंगे कि जो हम चाहते हैं वो हो।
तो जैसे भाई जी ने कहा कि गुस्सा चार घंटे पांच घंटे करके दिखाइए, तो मुझे भी अपना वो याद आता है कि यहां आने का जो मेन कारण यही था, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था और मुझे लगता था कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, सामने वाला गलत करेगा तो गुस्सा तो करना ही है, उसमें क्या है ना, समझाना ही है ना। अगर कोई मेरे एम्प्लॉयज हैं सही से काम नहीं कर रहे हैं तो मैं सैलरी दे रहा हूं, गुस्सा मैं करूंगा ही, तभी काम होता है। लेकिन यहां आकर जो समझ में आया कि गुस्सा अलग चीज है, स्ट्रिक्ट होना अलग चीज है ना, उसने मेरी लाइफ को चेंज किया। और दूसरी चीज कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं एंड सामने वाला मुझे अशांत नहीं कर सकता, अगर मैं अशांत हो रहा हूं दैट मींस कहीं ना कहीं मैंने अपनी बैटरी को चार्ज नहीं किया है। और एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा सिर्फ 30 सेकंड्स में। एक पुलिस हेडक्वार्टर में प्रोग्राम था तो वहां पर जो इंचार्ज थे, तो ये सेशन चल रहा था तो उनको कहा कि आप प्रैक्टिस करना, जब भी गुस्सा आए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता। तो उनको बीच में जाना पड़ा सेशन में, और लास्ट में जब उनसे हम मिलने गए उन्होंने कहा कि आज बहुत किसी ने गलत काम कर दिया था तो उसको मुझे रेस्टिगेट करना था, लेकिन वहां मैंने इसको यूज किया और मैंने एक्शन तो लिया लेकिन मन शांत था। तो गुस्सा, जैसे भाई जी ने बताया, गुस्सा अलग चीज है लेकिन स्ट्रिक्ट कई जगह होना पड़ेगा, बट उसमें स्टेट ऑफ माइंड हमारा क्या है, दैट इज द मेन थिंग। और किसी का भी प्रश्न हो तो आप आगे आ सकते हैं, एक दो प्रश्न और भी लेंगे हम, यहां पर आगे आके बैठ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी से। ओम शांति। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप लोगों ने हमें ये मौका दिया यहां आके स्पिरिचुअल ज्ञान लेने का, और धन्यवाद सभी सेवाधारियों को जिन्होंने इन चार दिन में किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तो जिन्होंने भी, जो भी सेवाधारी हैं जिन्होंने भी किया, हम सब मिलकर उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। क्योंकि कल भी जो स्पीकर्स आए थे उनके साथ जो थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 20 सालों से या 10-15 सालों से अलग अलग जगह जाता हूं इनके साथ, लेकिन आज पहली बार मैंने देखा कि इतनी प्योरिटी, इतनी सफाई, इतना अच्छे से मैनेज, मतलब पहली बार। तो सब सेवाधारियों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। मेरा सवाल ये है कि हमें ऐसा लगता था कि योग आंखें बंद करके किया जाता है, क्योंकि जैसे कहते थे ना मेडिटेशन करो तो पहला इंस्टिंक्ट क्या था, आंखें बंद करना। लेकिन आज पता चला आंखें खुली चाहिए। आंख खोल के हम अपनी आत्मा को कैसे देख पाएंगे? आंख खोलने पे तो आत्मा दिखाई नहीं देती है। तो दीदी जी ये प्रश्न है।
आप सब यहाँ पर बैठे हैं तो मन से अपने घर जा सकते हैं, जा सकते हैं तो जाइए, और घर में अपने किचन में जाइए, गए फ्रिज खोलिए, फ्रिज है वहां पर, दरवाजा खोलिए और फ्रिज के दरवाजे में कुछ नींबू पड़े हैं, बड़े बड़े येलो जूसी लेमन्स पड़े हैं, और उसमें से एक लेमन उठाइए, किचन प्लेटफॉर्म पे रखिए, उसको एक चाकू लेके दो हिस्से में काट दीजिए और फिर एक चम्मच लेके उसमें निचोड़ दीजिए और जितना बीज है वो निकाल दीजिए। अभी वो चम्मच में रस भरा हुआ है, अब वो नींबू का चम्मच वो अपने मुंह में रखिए। तो खट्टा लगा, किस किस को लगा खट्टा? बस यही है मेडिटेशन। आपको किसी को भी आंख बंद करना पड़ा? करना पड़ा नहीं। तो खुली आंखों से आप अपने घर भी गए, आप अपने किचन में गए, फ्रिज खोला, सब एक्टिविटीज मेंटली आपने सब कुछ किया, देखा, लेकिन आपको आंख बंद नहीं करना पड़ा। तो इसी तरीके से जैसे हम ये फिजिकल वर्ल्ड को अच्छी तरह जानते हैं, इसको हम अच्छी तरह विजुलाइज कर सकते हैं खुली आंखों से, अब मेडिटेशन में हम सोल वर्ल्ड, जो इनविजिबल चीजें हैं, सटल सूक्ष्म चीजें हैं, तो उसको हम मन ही मन से विजुलाइज करते हैं, जैसे अभी बताएं बुद्धि से उसे देखते हैं, तो आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। और जितनी हम आंख खुली रख के प्रैक्टिस करते हैं, ये शुरू में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जितना हम प्रैक्टिस करते हैं तो बाद में आप देखेंगे आपकी अवेयरनेस बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो जब प्रैक्टिकल में कार्य क्षेत्र में मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे कुछ सहन करने की शक्ति की आवश्यकता है, तो मैं किसी को बोल नहीं सकती अभी दो मिनट हम योग करके आ जाते हैं और फिर टॉलरेंस से हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इमीडिएट हमें वो पावर्स चाहिए। तो यदि पहले से ही मुझे प्रैक्टिस है खुली आंखों से मेडिटेशन करने की, तो खुली आंखों में हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम एक मिनट अपने आत्मा की नेचुरल स्टेट में जाकर टॉलरेंस लेकर हम अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये स्पेशलिटी या ये गिफ्ट हमें मिल जाती है खुली आंखों से मेडिटेशन करने से।
बहुत सुंदर। जैसे दीदी जी ने कहा कि जैसे मान लीजिए हम शुरू में जब कर रहे हैं तो डिफिकल्ट होता है ना आंखें खोलकर करने में, तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करना है। और खासकर जब मान लीजिए बहुत भीड़ है, ट्रेन में है मान लीजिए, वहां भी मेडिटेट कर सकते हैं। वहां बीच में अगर शुरू शुरू में आंखें थोड़ी देर बंद करने की जरूरत पड़े तो इट्स ओके, बट लक्ष्य ये रहना है कि हमें आंखें खोलकर ही मेडिटेट करने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि थॉट्स हम बैठे हैं सोच रहे हैं, तो वही बस उसको चैनलाइज करना है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत से लोगों का प्रश्न आता भी है, जो मिलते हैं वो भी ये प्रश्न पूछते हैं। तो सुरेश भाई जी, प्रश्न ये है कि यहां पर इतना सारा सब कुछ सेटअप जो होता है, व्यवस्था है, तो बिना धन के तो कुछ भी नहीं होता है, तो ये धन मतलब किस प्रकार से सारा सिस्टम चलता है, तो ये प्रश्न है।
देखिए, धन दिए धन ना खुटे कह गए दास कबीर, सुना है ना? लेकिन वो ये कहा जाता है ज्ञान के धन के लिए, और ज्ञान के धन की व्यवस्था करने के लिए जो जैसे अभी आपने कहा सेवाधारियों ने बहुत दिल से सेवा की, तो सेवाधारी तो दिल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन जहां धन की बात आती है तो घर परिवार में रहते हुए अपना कारोबार करते हुए जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है और उन लोगों के जीवन में जो खुशहाली आती है, जैसे मन की और बुद्धि की बात कर रहे थे, जब मन स्थिर रहता है बुद्धि सही निर्णय लेती है तो हमारा कार्य करने का तरीका भी अच्छा हो जाता है। और उसके लिए हमारी दादी प्रकाशमणि जी कहती थी, दिल खुश मुराद हासिल। उसके पीछे लॉजिक यही है कि जब व्यक्ति मन से खुश रहता है तब जो काम होता है, तनाव की स्थिति में जो काम होता है वो, गुस्से की स्थिति में जो काम होता है वो, और जो खुश रहता है वो, दोनों में क्या अंतर है? खुशी से जो करता है वो ज्यादा अच्छे से करता है। जैसे घर में अपना कार्य हम खुद करते हैं वो, और जो नौकर करता है वो, दोनों में अंतर है। ऐसे ही जब व्यक्ति जीवन में परिवर्तन देखता है तो खुशी खुशी से ही इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करता है। मेरे पीएचडी के इंटरव्यू के समय पर जो एक्सपर्ट थे उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप लोग कुछ कमाते तो है नहीं, यानी जो संस्था वाले हैं उनके बारे में, क्योंकि वो उनको पता था कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं। तो उन्होंने सवाल यही पूछा कि जो संस्थाओं में रहते हैं वो लोग समाज पर बोझ हैं, आप बताइए कैसे नहीं है। तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि मान लो एक रिक्शा ड्राइवर है, 200 रुपए शराब और बीड़ी सिगरेट में खर्च करता है, एक महीने का 6000 रुपए हुआ। जब उसको ये आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है और राजयोग के आधार पर मन सशक्त हो जाता है तब उसके वो खर्चे खत्म हो गए। अब वो 6000 रुपए जो बचा, देखिए उसका इम्प्लीकेशन की अगर बात करो तो उसके बच्चे कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं हो सकती है, घर में हिंसा का वातावरण बनता है, समाज में ताने सुनने पड़ते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से ही एक बात करें तो 6000 रुपए बचा। उसके कारण, दुष्प्रभाव के कारण बीमारियां होती हैं, दवाइयां खानी पड़ती है, उसका खर्चा बचा। और अगर लंबी बीमारी हो जाए जो लाइलाज बीमारी कहलाती है, उसके लिए तो बचना भी मुश्किल हो जाता है, उससे भी बच गया। वो जो खर्चे बचे उसमें से अगर उसने 20% 30% कितना भी कंट्रीब्यूट किया तो क्या होगा? ईश्वरीय कार्य भी होगा। और वो जो समाज पर बोझ बता रहे थे, मैंने कहा सर आप बताइए कि राष्ट्र के लिए आर्थिक प्रगति का एक आधार है, समाज के तौर पर सामाजिक उन्नति का आधार है, स्वास्थ्य की दृष्टि से सशक्त करने का, उसको ज्यादा स्वस्थ बनाने का आधार है, इसीलिए ये लोग बोझ नहीं है, ये तो समाज के लिए बहुत आवश्यक लोग हैं। तो धन की जहां बात है वो कंट्रीब्यूशन सभी जो भी हमारे सेवा केंद्र पर जाने वाले भाई बहन हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और वहां से ही ये धन की व्यवस्था यहां भी होती है। जो भी यहां आते हैं वो भी अपनी इच्छा अनुसार वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो सरकारी पद वाले होते हैं, चाहे वो व्यापारी होते हैं, चाहे वो नौकरी वाले होते हैं, सब अपनी इच्छा अनुसार करते हैं और उसी अनुसार ये सेवा का कार्य आगे बढ़ता रहता है।
बहुत सुंदर। और हमें भी याद है जब हम शुरू शुरू में गए तो जब एक मंदिर, शिव मंदिर था वहां थे सामने, इधर ब्रह्मा कुमारी का आश्रम था मोहाली में, तो वहां बाहर लिखा हुआ था 7 डेज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे मन में भी ये प्रश्न चला कि आजकल फ्री में तो कोई इंसान कुछ भी नहीं देता है, और ये 7 दिन 1-1 घंटा बुलाएंगे और फ्री में सब कुछ देंगे, है? लेकिन ये समझ आता है कि बाद में जब मुझे परिवर्तन हुआ तो ऑटोमेटिक जो मैं अपना काम करता था, ऑफिस था, तो जितना वहां पर मुझे सैलरी मिलती थी तो अपने आप आता है कि अब मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करना है ताकि और लोगों की हेल्प हो पाए, है ना? तो बहुत सुंदर। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम 2-3 अनुभव आपके सुनेंगे क्योंकि समय भी हो गया है। ओम शांति। माय क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम विद फियर, फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लॉस ऑफ माई सेल्फ एंड फैमिली, इन स्पाइट ऑफ लिविंग और वर्किंग इन नेगेटिव वाइब्रेशंस एज वी आर मेडिकल प्रोफेशनल। तो प्रश्न यही है कि जो डर है ना, चाहे वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड है या फिर जो अपने लव्ड वंस हैं कहीं वो मर ना जाए, शरीर ना छोड़ दें, या उनको कोई बीमारी ना आ जाए, या कई पेरेंट्स को होता है कि हमारे जो बच्चे हैं कहीं वो गलत संगत में ना चले जाएं, क्योंकि कॉलेज में जा रहे हैं, वहां पर एनवायरमेंट ऐसा है, तो कहीं गलत दिशा ना भटक जाएं, गलत दिशा में ना चले जाएं, तो ये जो डर है इसको हम इस पर कैसे विजय पाएं? तो दीदी आप प्लीज इसको एक्सप्लेन करें।
तो जो डर होता है वो डर अज्ञान के वजह से होता है, इग्नोरेंस की वजह से होता है, कोई बात का आंसर नहीं है हमारे पास तो होता है। और डर का ऑपोजिट है फेथ, डर का ऑपोजिट है लव। तो जिस चीज को हम डरते हैं, तो यदि हम विश्वास को बढ़ाते हैं और यदि हम उस चीज से प्यार करने लगते हैं, तो फिर डर बहुत धीरे 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 गायब हो जाता है। और डर में अक्सर करके इस टाइप के क्वेश्चंस मन में आता है कोई भी बात को लेकर के कि क्या होगा। तो हमारी दादी जानकी दादी ने बहुत अच्छे इसके जवाब दिए हैं, जो रामायण में बताते हैं ना, कई कई की वजह से श्री राम को वनवास में जाना पड़ा। तो कई कई को किसने खराब किया? तो मंत्रा ने। तो वास्तव में मंत्रा यानी हमारा जो मन है, ऐसे टाइप का जब क्वेश्चंस क्रिएट करता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, तो फियर उत्पन्न हो सकता है। यानी क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन हमारी देखभाल करेगा, फ्यूचर में मेरा क्या होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा, समझो कोई प्रॉब्लम है और कौन करेगा। तो दादी ने बहुत अच्छी तरह से इस सबका जवाब दिया। तो जब भी मन में आता है क्या होगा, तो हमें खुद को आंसर देना है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कैसे होगा? भगवान, मैं मेरी हिम्मत से और भगवान की मदद से। कौन करेगा? तो मैं ही करूंगी, मैं ही ये दृढ़ संकल्प लेती हूं कि मुझे अपने विश्वास को बढ़ाना है, मैं अपनी आत्मशक्ति से और परमात्मा की मदद से करूंगी। कब करेंगे? अब करेंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। तो इस तरीके से क्या, क्यों, क्यों अच्छा होगा? क्योंकि भगवान मेरे साथ है और इतना बढ़िया सा ज्ञान हमें मिल रहा है। तो हर बात का, जैसे बोलते हैं ना, हर क्वेश्चन का आंसर है, जब ताला है तो चाबी भी है। तो इसी तरीके से हर बात का समाधान है। तो इस टाइप से हम अपने मन को बार बार यदि हम ऐसा कहते हैं तो बहुत सारा डर निकल जाता है। तो एक्सपेरिमेंट करना, विश्वास रखिए, अपने में विश्वास, बाबा में, भगवान में विश्वास। इस सृष्टि नाटक जो आज आपने जाना कि सृष्टि नाटक कल्याणकारी है, स्वास्तिक माना शुभ है, तो ये मेरे लिए शुभ है, ये विश्वास एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक बार भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो आपका फेथ बढ़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए, फेथ को बढ़ाते रहिए, ऐसी बातों को सुनिए जिससे आपका फेथ बढ़े। ऐसी बातों को सुनना नहीं है जिससे फेथ घटे। फेथ, प्रेम, ये सब जो बढ़े, ऐसी ही बातें हमें देखनी है, सुननी है, बोलनी है। जो कहा जाता है ना गांधी जी के तीन बंधन, आपको बताया था ना, पांच, यहाँ पर पांच है वो, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, स्पीक नो ईविल, थिंक नो ईविल, डू नो ईविल। तो हम ये बातों का थोड़ा ध्यान देते हैं तो फेथ हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, प्रेम हमारे में बढ़ता जाएगा, तो फियर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा।
बहुत सुंदर। और जैसे विधि ने कहा कि ज्ञान जब जीवन में आता है ना, डर माना क्या है? अज्ञानता। तो जितना ज्ञान समझ में आता है, प्लस दोनों चीजें कनेक्टेड हैं कि हमें कर्म भी करना है और फिर सरेंडर करना है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ कर्म करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं। कई क्या करते हैं, सिर्फ सरेंडर करते हैं कि वो देख करेगा अपने आप, और कर्म नहीं करते हैं। तो वो दोनों का बैलेंस रखना है कि हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, प्लस कल क्या होगा वो फिर सरेंडर करना है। क्योंकि कर्म अगर हमारे अच्छे होंगे, ये कॉन्फिडेंस भी, फेथ भी होना चाहिए कि कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा, कैसा होगा बोलिए, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। अच्छे से आवाज नहीं आ रही, अच्छे से बोलिए, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, उधर माताएं नहीं बोल रही है, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, है ना। लेकिन कब होगा अच्छा? कर्म अच्छे होंगे तो, ऐसे नहीं कर्म खराब करते जाएं और मेरे साथ अच्छा होगा। चलिए, बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे निश्चित तौर पर, और हम सभी का भी मन है कि और सारे आंसर्स दें, लेकिन समय हो चुका है। प्लस आप जब अभी तो जर्नी खत्म हो गई या स्टार्ट हो रही है? स्टार्ट हो रही, ये नहीं सोचना बस खत्म अब वापिस जाकर सेम वैसे हो जाएंगे, नहीं। 21 डेज का भी ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, प्लस आपका जो लोकल सेंटर है वहां जाकर आगे की यात्रा पर हमें चलना है। हर दिन एक घंटा हमें ज्ञान के लिए जरूर निकालना है। कौन कौन निकालेंगे? ये इतना हाथ तो नहीं, अच्छे से हाथ उठाइए। निकालेंगे सभी, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। वेरी गुड। चलिए, अभी हम आप में से कोई भी आए जो इस कॉन्फ्रेंस का अनुभव, लेकिन ओनली इन 2 मिनट्स, ठीक है। जैसे ही 2 मिनट होंगे तो हम यहां से बोल देंगे, बुरा नहीं मानना है उसका, क्योंकि आपका ही समय। अगर आप कहते हैं कि 10 बजे तक बैठे तो आप आराम से सुनाइए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। सो 2 मिनट्स में इस कॉन्फ्रेंस का अनुभव, ठीक है, ओनली दिस कॉन्फ्रेंस, क्या सीखा, कैसा लगा, अपना नाम बताकर, कहां से आए हैं और इस कॉन्फ्रेंस का अनुभव। और अगर हमें लगेगा ज्यादा समय हो गया है तो हम बीच में बोल देंगे, उसका बुरा नहीं मानना है।
धन्यवाद। ओम शांति। हम जब मेरे साथियों ने, हम सुशील कुमार सिंह बनारस DLW रेल कर्मचारी हैं, तो हमारे यहाँ एक कुछ साथियों ने चर्चा किया कि हम लोग को ब्रह्म कुमारी चलना है। कुछ साथी पहले से आए भी थे, तो हमने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया, रिजर्वेशन भी करा लिया था, लेकिन दुविधा थी कि जाना है नहीं, बहुत सारे काम है, ये है। लेकिन हम सवेरे डेली योगा करते हैं, तो जहाँ योगा हम करते हैं सवेरे 5 से 6, उन्होंने कहा कि आप जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, काम तो आते जाते रहेंगे। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि हमको जाना है, नहीं तो मैं टिकट कैंसिल कराने वाला था। हमारे साथी लोग पूछ रहे थे जाएंगे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वाकई मैं दिल से कह रहा हूँ, तो मुझको लगा कि मेरे साथी भी कह रहे थे लगता है आप पर कुछ प्रभाव पड़ गया है, तो और हमने तो ये सोचा कि आगे से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ इस चीज को आगे बढ़ाना है कि सारी समस्याएं हमारे मन में है। अगर हम अपने मन पर अपने को ये मान लिए कि हम मजबूत हैं तो मजबूत हैं, कमजोर हैं तो कमजोर हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस संस्था को कि आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, और इस प्रेरणा से हम लोग भी आगे इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आज कोई और है, आगे आ जाए। हाँ, अपने आप आगे आ जाए, आ जाइए, ऐसे रख के, और थोड़ा उनको पीछे खड़ा कर देना, बैठ जाइए, बैठ के आराम से।
ओम शांति। यहाँ आने से पहले
नाम और कहाँ से आए हैं?
मेरा नाम सत्यनारायण, लोको पायलट, अजमेर। यहाँ आने से पहले मन में कुछ सवाल थे और जिनके बारे में कुछ आंसर्स मुझे नहीं मिल रहे थे। घर बैठकर योगा करते थे, सुबह सुबह उठकर जब भी समय मिलता योगा करते थे, लेकिन पता नहीं एक मन में विचार आता था शिव तत्व को जानना है। पता नहीं क्या विचार था। मेरे जस्ट पास ही में पिछले साल ही ब्रह्म कुमारी का आश्रम, वो मेडिटेशन सेंटर बना है, जिसे संचालित जुगल किशोर भैया कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा मिली कि आपको कुछ जानना है तो एक बार वहां जाकर आइए, तो एक अच्छा अवसर था। यहाँ आने के बाद मुझे जो कॉन्सेप्ट थे, जो मैं खुद अकेला घर पर बैठकर योगा करता था, बहुत से विचार चलते थे मन में, उनका आंसर नहीं मिल रहा था। यहाँ आने के बाद सारे कॉन्सेप्ट और फंडे ही क्लियर हो गए, A to Z, मतलब किसी चीज की कुछ जरूरत ही नहीं रही अब, कि सब कुछ क्लियर। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा LKG के अंडर एडमिशन हो गया, जो नन्ना बच्चा होता ना अपना, उसको जैसे अपन ABCD सिखाने या जिसके लिए भेजते हैं, 3 साल के बच्चों को आजकल प्ले स्कूल में भेजते हैं, तो शायद मेरा ऐसा वहां यहाँ एडमिशन हुआ स्टार्टिंग डे से, और आज जो लास्ट डे है ना, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे जो क्वेश्चन थे सबका मुझे आंसर मिल गया है, और मैं फुलफिल होकर यहाँ से जा रहा हूँ। और ये जो चीज मैंने सीखी है, शायद मेरे साथी लोको पायलट्स को मैं और उनको बताऊंगा कि आपको जब भी समय मिले, छुट्टी मिले, एक बार इस आश्रम जरूर आए और इस जो हमारे जो ड्यूटी शेड्यूल है उससे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और जो काम हम करते हैं ड्राइविंग का उसमें और मुझे अच्छा करने का अनुभव हुआ है कि मैं और अच्छा कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।
बहुत सुंदर अनुभव सुनाया और जैसे इन्होंने कहा कि अब जो मिला है मुझे आगे जाकर दूसरों को देना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर।
सबसे पहले सबको ओम शांति। मैं नागपुर से आर टू ऑफिस नागपुर सिटी से आया हूँ। सर मेरे लिए गोल्डन टिकट ही मिले क्योंकि मेरे को एकदम टाइम पे बताया मेरे साहब ने कि तुम्हें जाना है करके। तो कल सर मेरे को फोन आया घर से, लेकिन मैं इधर प्रोग्राम में था, खत्म होने के बाद में घर में ऑफिस में खाना खाने गया तब घर में फोन लगा है, तो बोले अपने घर में एक डेट हो गई। बोले तो डेट होने के बाद मुझे कुछ भी नहीं लगा, जो यहाँ पे मन पे जो आया था जैसा पहले लगता था डर वो कुछ भी नहीं लगा। और सर मेरे दोस्त जो था यहाँ से यहाँ पे आने के पहले, मेरे दोस्त का नाम था क्रोध। क्रोध बहुत 99% मेरा दोस्त क्रोध था। यहाँ पे जो आप बातें बताएं जो सुना मैंने वो यहाँ से निकल गया। क्रोध के कारण सर मैं एक बार रेलवे स्टेशन पे भटके चला गया था और आज वहां पे भी एक अच्छा आदमी नहीं आता तो मैं घर में निकल नहीं जाता था, तब से उसके कारण यहाँ पे आया हूँ। क्रोध के कारण मेरे बीवी और बच्चे से भी पटता नहीं। मैं मेरी बीवी को बताया मेरे को यहाँ आ गया, लेकिन मेरे बच्चे बोले तुम्हारा चिड़चिड़ापन और एक कम होने के लिए भगवान ने आपके लिए यहाँ पे भेजा बोले। इसलिए अभी मैं ये आगे में भी मेरे घर के बाजू में सेंटर है तो वहाँ पे जाते रहूंगा और यहाँ से मेरा नया जीवन चालू हो गया। धन्यवाद, थैंक यू।
और अच्छा, सर बहुत अच्छा, वेरी गुड।
यहाँ पे आने के पहले मेरी जो टिकट मेरे हमारे एक दोस्त है, आने के पहले मेरे पास पैसे भी नहीं थे तो मेरे दोस्त ने भी मेरी टिकट निकाल के दिया, तो वो भी मेरे लिए एक लकी था और मैं बहुत खुश नसीब समझता कि ईश्वरीय विद्यापीठ से आज मेरे भगवान के यहाँ से मेरे को एक डिग्री मिली और नया जीवन की शुरुआत मेरी हो गई।
बहुत अच्छा। अपना नाम और
मंगेश बाबू रक्कड़ू नागपुर से क्लर्क आरटीओ में।
वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कल भी भैया से बात हो रही थी तो इन्होंने यही बताया कि जो गुस्सा इनका दोस्त जो है अब उनको यहीं छोड़ के जा रहे हैं, ये वापस तो नहीं लेके जाएंगे ना, गेट के बाहर खड़ा है, दीदी बता रहे थे ना वापस नहीं लेके जाना है। और रेगुलर सेंटर पे जाएंगे तभी वो फिर हमेशा उससे आपका ब्रेकअप हो जाएगा।
ओम शांति। मेरा नाम काजल सहर, अहमदनगर, मेरे पति आरटीओ में। मेरे घर में बचपन से मेरे माता पिता शिव बाबा का कोर्स करते हैं, जाते हैं सेंटर में। मैंने 4 साल पहले ये कोर्स किया खामगांव में। मुझे मतलब बचपन से ही पता था शिव बाबा, लेकिन एक्चुअली क्या ज्ञान है वो खामगांव में पता चला कोर्स करने के बाद। तभी से मेरी इच्छा थी कि मेरे पति ने भी मेरे साथ आके कोर्स करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा नहीं बोलते थे। और उनको ऑफिस में से वो ऑर्डर आया कि जिसको जाना है वो जा सकते, और मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई और मधुबन जैसे स्वर्ग में आके वो उन्होंने मेरे हम दोनों ने कोर्स किया। इससे बड़ी खुशी मुझे मतलब बहुत हो रही है अभी।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी जाकर क्या करेंगे बहन? हाँ, पूरा अच्छे से करना है। ठीक है, अभी आए हैं आपके साथ, पीछे बैठे हैं। ठीक है, जाएंगे।
ओम शांति। सर मैं इंडियन रेलवे से हूँ, मेरा नाम उत्तम है और 64 रेलवे नांदेड़ से हूँ। सर मैं यहाँ के इतना खुश हुआ हूँ मैं कि पहली बार आई इतना समाज सेवी जो संस्था है हमने कभी देखी नहीं सर। और इतना प्यार से समझाना और पूरा खाना पीने का जैसे बच्चों को माँ बाप जैसे देखते ना सर, कि किसी चीज़ की कमी ना हो, वो यहाँ देखा हूँ सर मैं। और ये संस्था के लिए मैं आगे हमारे दोस्तों को और हमारे रेलवे से और हमारा रेलवे का सर 20 लोगों का हर ट्रिप में भेजना है, इसे बढ़ाने की भी बात बोलूंगा सर। और सभी का धन्यवाद सर।
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अनुभव, वेरी गुड। चलिए लास्ट, आई थिंक है ना, एक लास्ट आ जाएं। आप आगे आ जाइए ना, फिर नहीं तो नहीं होगा, आगे आ जाइए, एक मिनट में आप सुना।
मेरा नाम मंगल राजू है, DLW वाराणसी से, रेल कर्मचारी है, सीनियर टेक्नीशियन। मुझे लगा कि मैं 20 साल से एक ही जगह पर जहां सर्विस करते हैं, मुझे कभी किसी से
झगड़ा तक नहीं हुआ, नहीं कभी हम किए हैं, हमसे झगड़ा होता है लेकिन मैं बहुत शांत से रहते। मुझे सब लोग मित्र लोग बोलते यार आप झगड़ा किसी से भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे तो आप क्या नौकरी करेंगे, लेकिन मुझे 20 साल बीत गए मुझे कभी पता नहीं ये इस तरह निकल जाएगा। तो मेरे घर पे भी पत्नी बोलते आपको तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, आपको इतना बोलने के बाद भी आप कुछ नहीं बोलते। हम बोले चलो ठेलो यार उस बोल दिया तो ठीक है, वो आज अच्छा है ठीक है।
तो मुझे इनके जो चेहरे की स्माइल है वो भी बता रही है।
उसके बाद मुझे यहाँ आने से पता चले कि मैं सही हूँ, बाकी जो है गलत।
बहुत अच्छा बताया। और हम सब इनसे ये और एक अनुभव ले सकते हैं।
और मुझे यहाँ आने के बाद श्रेय दीदी से जो भी इंस्पायर हुए आज लगा कि हाँ हम सही है।
बहुत अच्छा,
थैंक यू।
तो प्यार से और खुशी से काम चल सकता है ना। वेरी
ओम शांति। मैं संतोष कुमार सिंह पटना से लोको पायलट हूँ इंडियन रेलवे में। और मेरे पिताजी माँ तो बोलती थी कि मन का शक्ति बहुत बहुत बड़ी शक्ति होती है, यहाँ आकर पता भी चला और अनुभव भी किया, शांति तो मिलती है, मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। और मैं इस संस्था का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस संस्था ने ऐसा ऑर्गेनाइज किया ताकि लोगों को मन की शक्ति को पता चले। मन से जो एक कहावत है कि मन के हारे हार मन के जीते जीत, जो मन से हार जाता है वो मन हार जाता है, जो मन से जीतता है वो जीत जाता है। तो मैं ये संस्था से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज के समय में सबसे ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, सबसे ज्यादा किसान सुसाइड करते हैं। मैं संस्था से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम जो नए युग के लोग हैं जो अभी जीवन शुरू करना चाह रहे हैं या शुरू कर रहे हैं उनको इस संस्था से जरूर ज्ञान मिले। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि इसके विषय में आप लोग जरूर सोचें। क्या करना है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरी एक निजी आपको रिक्वेस्ट है। ओम शांति।
वैसे तो आपने जो सेशन हुए उसमें सुना भी होगा, लेकिन वैसे हमारे 20 विंग्स हैं और सभी विंग्स अलग अलग क्षेत्र में एक्टिविटीज करते हैं। जैसे एजुकेशन विंग जो है स्कूल कॉलेजेस वगैरह में प्रोग्राम्स राउंड द ईयर करते हैं, और हम विशेष तौर पर आप सबसे अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहां जहां भी हैं अपने जो नियरेस्ट स्कूल और कॉलेजेस हैं वहां पर हमारी फैकल्टीज को बुलाएं। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र तो आपने बताया मन की स्थिति का, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, मृत्यु का शिकार हो रहे हैं लोग, उनके लिए सेफ्टी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करवाना स्कूल्स कॉलेजेस में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में वही एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या जो है वो यंगस्टर्स की है और उसमें भी विशेष बाइकर्स की, तो उनको मोटिवेट करना एक पॉइंट ताकि उनकी सुरक्षा हो। और बच्चों को, छोटे बच्चों को भी हम जब कहते हैं, मान लो आप 6th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए कह रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स को भी टोकते हैं, रोकते हैं प्लीज। और कौन पापा ऐसा होगा जब बेटा बोले पापा प्लीज फॉर माय सेफ्टी हेलमेट पहनो और मुझे भी हेलमेट दो, कोई पापा मना करेगा क्या? तो वो करवाएंगे। तो हम आपसे ये सहयोग भी चाहते हैं कि आप सभी अपने क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें। किसानों के लिए हमारी अलग से विंग है जो विशेष उस क्षेत्र में रिसर्च कर रही है कि उनकी यील्ड यानी कि पैदावार की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़े। मेडिटेशन के माध्यम से हमने रिसर्च किया है और उस रिसर्च के आधार पर संभव हुआ है, जिसके प्रोजेक्ट का नाम है शाश्वत योगिक खेती। और ये रिसर्च सेंटर जो कृषि केंद्र है उनके माध्यम से भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं और इसे और भी आगे बढ़ाएंगे।
और जैसे आपने कहा ना कोटा में भी अभी यूथ विंग के द्वारा ये प्रोग्राम चल रहा है कि कैसे, क्योंकि वहां पर सुसाइड्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी बिल्कुल और भी इस पे करेंगे। बस एक लास्ट समय हो गया है, लास्ट एक अनुभव सुनाएंगे, ठीक है? एक सेकेंड लास्ट हो गया। ओके,
ओम शांति। मेरा नाम राजू है, मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ। जो हम लोग 20 लोग ऊटी से आए हैं, तमिलनाडु ऊटी से, जो मैं 2001 में जो मुंबई में थे कलीना में, जो सांता क्रूज में जाता था, वैशाली बहन ने सर एक महीना वहाँ पे क्लास में जाता रहा, फिर उस बात छूट गया, प्रैक्टिशन आर्मी में जब काम करता था सब छूट गया, तब तभी अभी तक जो काम करते थे गुस्सा बहुत आता था, लेकिन हम ये सोचता जो काम करते हैं काम अपना काम में अच्छा रहो, जो अच्छा सोच रखो, ये चलता था, गुस्सा कम नहीं हो रहा था। देखो बातों बातों में गुस्सा आता था, जब ये भी ये होता था मैं कौन हूं, हम एक एक पद में रहते थे, हम वही सोच के बैठते थे, हम यही है, हम वही है, तो ये चीज से आगे भी लेके चलते थे। जब तक पद में रहते थे तब तक वैल्यू है, जब निकल जाता है हम मनुष्य हो जाते हैं तो वो चीज हमारे साथ नहीं आता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ये चीज समझना है मैं कौन हूं, इस चीज को उत्तर था अभी तक था, बहुत किताब पढ़ते थे, लेकिन यहां समझ में मैं कौन हूं, वो चीज का अच्छा उत्तर मिला। जो इस सेशन में सब कुछ अच्छा रहा, ये आप लोग उसमें उम्मीद रखता हूं कि आगे इस चीज को आगे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम इसके साथ जोड़ नहीं पाएंगे, हम इस चीज का आगे नहीं चल पाएंगे। जब तक है जब अच्छा काम करिए, अच्छा सोचिए, अपना मन को मजबूत रखिए, आगे सब कुछ अच्छा होगा, आगे जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा।
बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सर, वेरी गुड। चलिए, हमें पता है आप सब अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, लेकिन समय को देखते हुए ये लास्ट अनुभव हम लेते हैं, क्योंकि नहीं तो आपको नाश्ता नहीं मिलेगा।
ओम शांति, मेरा नाम प्रमोद देसाई है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर फोर्स वन। हम छह लोग यहाँ पे आए हैं फोर्स वन स्पेशल फोर्स से। हमें जो यहाँ पे आने का अवसर मिला, हमारे DCP गजानन राजमानी साहब, जिन्होंने 2 महीने पहले एक यहाँ पे कोर्स हुआ था सिक्योरिटी विंग का, जो हमारे 60 कमांडोज यहाँ पे आए थे, उसके बाद सर का आग्रह था कि जितने भी अभी ब्रह्मा कुमारीज में जितने भी सेशन चलेंगे वहाँ पे अपना कोई ना कोई जाएगा, तो हम ट्रांसपोर्ट विंग से है, 6 लोग यहाँ पे आए। हमें यहाँ पे अगणित बातें सीखने को मिली, जैसे एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ, मीना देवी का जोगेश्वरी सेंटर से है, उन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन से लेके रजिस्ट्रेशन हुआ, वहाँ पे जो वातावरण है कैसा वातावरण है, आपको क्या क्या लेके जाना है, ट्रेन का ट्रेन में बैठने को जगह मिली कि नहीं, आप वहाँ पे पहुंचे कि नहीं, यहाँ पे आने के बाद आप रिसेप्शन में कमला बहन को मिलो, वहाँ पे आपको आपका जो भी कोर्स का सेशन का है वो डिटेल्स आपको वहाँ पे समझाएंगी। इतना प्यार से उन्होंने हर एक 2 घंटे में कॉल आता था दीदी का, जैसे मुझे घर से इतने कॉल नहीं आए फैमिली के कि आप बराबर पहुंचे कि नहीं, लेकिन दीदी के कॉल है, इसीलिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज का, क्यों ये पूरा वर्ल्ड में इतनी अगणित सेवाएं दे रही है, तो हमें भी अभी एक अवसर मिले कि हम ये ब्रह्मा कुमारीज की सेवा के लिए यहाँ पे रुकू, ऐसा मुझे
लग रहा है। बहुत अच्छा, तो आप अभी क्या करना, रेगुलर जाते हैं सेंटर पे?
नहीं सर, अभी से शुरू,
अभी से शुरू करना है, फिर अगली बार जो आना है यहाँ पर सेवा करने आना है, ठीक है? बहुत अच्छा, और आपकी स्माइल भी बता रही है आपको कितना सुंदर अनुभव। कहाँ से आए आप?
सर महाराष्ट्र से, मुंबई।
मुंबई
स्पेशल फोर्स ऑफ
मुंबई में कहाँ से?
जोगेश्वरी।
जोगेश्वरी, चलिए बहुत सुंदर। एक मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य की शुरुआत मेडिटेशन से ये नियम बनाना है, और वो खत्म होने के बाद भी 1 मिनट मेडिटेट करके परमात्मा का शुक्रिया।